नमस्कार, आप सुन रहे हैं DUFM 90.4 और मैं हूं आपका दोस्त निखिल आनंद गिरी। सदा हमारा प्रयास रहा है कि हम युवा प्रतिभाओं को एक साथ जोड़ें, उनकी विभिन्न कला प्रतिभाओं को एक मंच पर प्रस्तुत करें और पहुंचाएं आप तक। तो आज हम इसी उद्देश्य के साथ पहुंचे हैं दिल्ली के एक मशहूर पार्क में और यहां बैठे हैं कुछ युवा कवियों के साथ। मुझे यहां पहुंचकर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जिससे मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। कार्यक्रम का नाम है kavi.com। प्रकृति यहां कण कण में बैठी निर्मल रूप दिखाती है, हृदय हृदय को झनकृत कर तन मन हर्षित कर जाती है। जी हाँ, पंछियों के कलरव और सुंदर वातावरण के बीच हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कवि। आइए हम पहले जानते हैं इनका परिचय। हमारे साथ हैं मनीष वंदे मातरम, अवनीश गौतम, अजय यादव, राशि जमुआर, शैलेश भारतवासी, भूपेंद्र राघव, रंजना भाटिया और मैं निखिल आनंद गिरी। तो सबके लिए हो जाए जोरदार तालियां। भारत कवियों का देश रहा है। यहाँ पे कोई छोटा सा दर्द उभरता है या फिर कोई आयोजन होता है तो निकलती है सबसे पहले टीस, और टीस उभरती है शब्दों से, शब्द बनाते हैं कविता। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले कवि शैलेश भारतवासी से।
नमस्कार। बात अभी मुश्किलात की हो रही थी और कष्टों की हो रही थी, तो मैं भी कुछ उसी तरह की कविता पढ़ने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कितना मुश्किल होता है। कितना मुश्किल होता है लोगों को यह बताना कि मैं कमजोर हूँ। सामने जो पहाड़ है ना, उनकी तरह मैं भी नहीं लांग सकूं। सबने बराबर झूठ बोले हैं।
क्या बात।
कितना मुश्किल होता है पिताजी को यह समझाना कि बाबूजी पढ़ते पढ़ते अब जी उब गया है, सब ढकोसले हैं। बड़ी मुश्किल से तो मुझे यह बात समझ में आई है, मगर आप नहीं समझ पाओगे।
क्या बात।
कितना मुश्किल होता है सुब्बों को यह समझाना कि पगली जिन रेल की पटरियों पर कभी बिना गिरे संभल संभल कर चलना मुझे अच्छा लगता था, उन्हीं पर चढ़ कर मुझे दिल्ली जाना पड़ता है।
क्या बात है।
इन्हीं पटरियों ने बहुतों का घर सूना किया है।
इन्हीं पटरियों ने बहुतों का घर सूना किया।
कितना मुश्किल होता है भगवान को यह समझाना कि यह दुनिया जैसी तुमने बनाई थी वैसी नहीं बची है। अब लोगों ने नियम बदल लिए हैं, अब तुम मत आना नहीं तो तुम्हारी भी पोल खुल जाएगी। विश्वास नहीं है ना तो मजबूर का अवतार ले ले, फिर रावण क्या, तू तो फिर मामूली नेता से नहीं मिल पाएगा।
बहुत ही प्यारी और संजीदा कविता। शैलेश जी, क्या और एक कविता सुनाएंगे?
बिल्कुल
जी हाँ, तो हो जाए जोरदार तालियां इनकी पहली कविता के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे दोबारा अवसर मिला। आज गणतंत्र दिवस है, हमारा पूरा देश इस रंग में रंगा है, देश में जश्न का माहौल है, फिर भी मैं देश की हालत पे एक व्यंग कर रहा हूँ। मैंने कविता का शीर्षक दिया है हमारा इंडिया। हम तो आज भी अंग्रेजों के अधीन हैं, हम तो आज भी अंग्रेजों के अधीन हैं, क्योंकि भारत इंडिया में विलीन है।
क्या बात है, बहुत अच्छी।
भारत वर्षोन्नति हो भी तो कैसे, भारत वर्षोन्नति हो भी तो कैसे, जब हर कोई पलायन को तल्लीन।
क्या बात है।
कैसे जमा हो बिजली पानी सड़क का खर्च,
कैसे जमा हो बिजली पानी
सड़क का खर्च
जी,
कैसे जमा हो बिजली पानी सड़क का खर्च, जबकि टैक्स भरने के प्रति हम उदासीन।
वाह वाह।
कैसे बनाओगे दिल्ली को लंदन जैसा, कैसे बनाओगे दिल्ली को लंदन जैसा, जब यहाँ आधी बस्तियाँ मलिन हैं।
वाह वाह वाह।
हर दुकानदार करा रहा है यहाँ बाल मजदूरी, हर दुकानदार करा रहा यहाँ बाल मजदूरी, यह जानते हुए अपराध यह संगीन है। एड्स पर पूरा अंकुश आखिर लगे भी तो कैसे, एड्स पर पूरा अंकुश आखिर लगे भी तो कैसे, जबकि हजार पर 933 खवातीन हैं।
क्या बात है।
क्यों बढ़ाते जा रहे हो संतानों की फौज, न खाने को अन्न है न रहने को जमीन।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी कविता। क्यों बढ़ाते जा रहे हो संतानों की फौज, न खाने को अन्न है न रहने की जमीन है। बहुत ही संजीदा कविता, बहुत ही देश की व्यवस्था पर बिल्कुल तीक्ष्ण प्रहार करते हुए। मुझे भी कुछ कविताओं की पंक्तियां याद आ रही हैं कि एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक और आदमी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी के साथ खेलता है। तो शैलेश जी की इस प्यारी सी रचना के बाद हम रुख करते हैं अपने दूसरे कवि की तरफ। और दूसरा कवि युवा है और काफी बढ़िया सोच रखता है, छंद में लिखता है और छंद के अलावे भी लिखता है। तो उस कवि का नाम है अजय यादव और हम चलते हैं अजय यादव के पास कि अजय क्या लेकर आए हैं आज हमारे kavi.com के लिए।
शुक्रिया निखिल जी,
जी
आपने मुझे मौका दिया। मैं आज एक गजल सुनाने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है मायूस हो गए।
मायूस हो गए
जी, हाँ। जी। अक्सर जिंदगी के जो भी मोड़ आते हैं, कई मोड़ इस तरह के आते हैं जहाँ आदमी मायूस हो जाता है।
जी बिल्कुल।
तो ऐसे ही कुछ मोड़ों का जिक्र मैं कर रहा हूँ मेरी इस गजल में।
जी इरशाद।
जिंदगी से इस कदर मायूस हो गए, जिंदगी से इस कदर मायूस हो गए, चुप्पी का कफन ओढ़ लिया और सो गए।
बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
जिंदगी से इस कदर मायूस हो गए, चुप्पी का कफन ओढ़ लिया और सो गए। हर कारवां लुटता रहा रहबरों के सामने, हर कारवां लुटता रहा रहबरों के सामने, वो रेत की दीवार थे महसूस हो गए।
क्या बात है।
वो चीख सी उठी कहीं, वो चीख सी उठी कहीं और खो गई, रास्ते तमाम शहर के मनहूस हो गए। जिंदगी से इस कदर मायूस हो गए,
चुप्पी का कफन ओढ़ लिया और सो गए। क्या बात।
अब यूं नहीं रहा, अब यूं नहीं रहा कि बस उठ के चल पड़े, अब यूं नहीं रहा कि बस उठ के चल पड़े, इंसानियत का आईना मलबूस हो गए। न यकीन रहा कोई अजय के भी ईमान का,
न यकीन रहा कोई,
न यकीन रहा कोई अजय के भी ईमान का, हमको तो इतने हादसे मानूस हो गए। हमको तो इतने हादसे मानूस हो गए।
तो अजय जी की इस प्यारी किसी कविता पर बजे जोरदार तालियां क्यों। और अब अजय कुछ और सुनाएंगे आप।
जरूर, आपने दोबारा बुलाया इसके लिए शुक्रिया। तो मैं अपनी दूसरी रचना सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सड़कें सर्द रात में। मौसम सर्दियों का है और दिल्ली की सर्दी वैसे भी काफ़ी बदनाम है
जी, बिल्कुल।
तो ऐसी एक सर्दी का मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पर। सड़कें वीरान हो जाती हैं, सड़कें वीरान हो जाती हैं सर्दियों की रातों में, जैसे सबका रुख मुड़ गया हो सच की ओर। अपनी अपनी जगह भीगती रोशनी में लिपटे, अपनी अपनी जगह भीगती रोशनी में लिपटे, गुमसुम लैम्प पोस्ट सब कुछ शांत सिवाय टपकती ओस के। सहसा दूर कहीं कोई आहट ध्यान बरबस खिंचता है उस ओर।
अच्छा।
सहसा दूर कहीं कोई आहट ध्यान बरबस खिंचता है उस ओर, एक तसल्ली होती है कोई तो है इसी राह पर। दिन में छोटा सा लगता रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और कदम खुद ब खुद तेज हो जाते हैं।
क्या बात है। ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और कदम खुद ब खुद तेज हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह से हमारी महफिल की रवानी भी तेज़ हो चुकी है। और जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, हम बिल्कुल प्रकृति के बीच बैठे हैं, एक दिल्ली के सबसे सुंदर पार्कों में से एक। और माहौल थोड़ा सा गमगीन, थोड़ा संजीदा हो गया है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा हास्य का पुट इसमें भरें। और हास्य का पुट भरने के लिए हमारे साथ हैं आशु कवि भी हैं और बहुत प्यारी रचनाएं लिखते हैं, बहुत ही तीखा व्यंग्य भी करते हैं और हास्य का बिल्कुल गहरी समझ रखते हैं, भूपेंद्र राघव हमारे तीसरे कवि। आइए उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, फिर चलते हैं भूपेंद्र जी के लिए।
धन्यवाद निखिल जी। आज गणतंत्र दिवस और मैं अभी कल निकल पड़ा ऐसे ही घूमने के लिए, तो मैंने कुछ जो कुछ नोटिस किया वो मैं आपको इस अपनी कविता के जरिए आपको पेश कर रहा हूँ।
जी स्वागत है।
गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले करने दिल्ली की सैर चले, बधी टॉट बर्फीली हवा से करके हिम्मत खैर चले। गधे के सर के सींग के जैसे, गधे के सर के सींग के जैसे आसमान बिन सूरज के, हालांकि इस वक्त घड़ी में 20 मिनट थे 2:00। धुंध और कोहरे की चादर, धुंध और कोहरे की चादर, हाथ से हाथ नहीं दिखता था, दो पेड़ों का झुंड दूर से इंडिया गेट ही लगता था। धुंध और कोहरे की चादर, हाथ से हाथ नहीं दिखता था, दो पेड़ों का झुंड दूर से इंडिया गेट ही लगता था। तभी अचानक नजर पड़ी मानो दुर्वासा ऋषि आए, तभी अचानक नजर पड़ी मानो दुर्वासा ऋषि आए। पतली पतली निर्वस्त्र भुजा शंकर के अंबर लटकाए। ढकने के नाम पर बाजू पर, ढकने के नाम पर बाजू पर, बस टैटू लगे भुजंगों के, घुटने से ऊपर तंग वस्त्र पायचे अलग अलग रंगों के।
क्या बात है।
एक हाथ कमंडल पर्स लिए दूजे सिगरेट का दम भरती, मस्तक पर बिंदी नागिन की आई एकदम फू फू करती। बोली एक्सक्यूज मी मिस्टर वेयर इज दिस नागलोई, गलती से मैं आ गई यहाँ, क्या मिलेगी यहाँ से बस कोई।
क्या बात है।
मैं बोला नागलोई में ही तो आप खड़ी हो मैडम जी, मेरी बातों को सुन झटकी एकदम बोली नहीं समझी। बोली इंडिया गेट है यह तो राष्ट्रपति का भवन यहाँ, हाई कोर्ट दिख रहा पास में, नागलोई यहाँ आई कहाँ।
क्या बात है।
मैं बोला मैडम जी देखो झूठ बात हम नहीं करते, नाग लपेटे तुम फिरती और लोई लपेटे हम फिरते।
क्या बात है। बहुत खूब भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही प्यारी रचना। और इस बीच हम बताते भी चलें कि DU FM 90.4 FM आपका अपना चैनल है, आप यहाँ जब चाहें मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी जल्दी से नोट कर लें, हमारी ईमेल आईडी है DUFM90.4@gmail.com DUFM90.4@gmail.com। तो फिर हम चलते हैं अपने कार्यक्रम kavi.com की तरफ। हमारे साथ कई सारे कवि मौजूद हैं और सुंदर सी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ ना आए तो फिर कवि गोष्ठियों का मज़ा ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए हमारी कवि गोष्ठी का रस बरकरार रखने के लिए और उसे सुरमई बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राशि जमुआर। राशि, क्या सुनाएंगे आप?
निखिल, जैसा कि आपने कहा था कि गणतंत्र दिवस और शुरुआत में आपने कहा था टीस टीस से शब्द और शब्द से कविताएं, तो ऐसी कुछ पुरानी यादें हैं मेरी भी स्कूल के टाइम की गणतंत्र दिवस की तैयारियों की, तो मैं उन्हीं में से एक रचना आपको सुनाने जा रही हूँ।
स्वागत है राशि।
याद है मुझको बरसों पहले, याद है मुझको बरसों पहले स्कूल में 26 जनवरी की वो तैयारी, वो मास पास की कड़ी धूप में, वो मास पास की कड़ी धूप में वो हंसी ठिठोली की बीमारी। तब भी हंसते थे, आज भी हंसते हैं। तब देश बचपन की धूल में धुंधला दिखता था, आज गाड़ियों के धुएं में धुंधला दिखता है।
क्या बात है?
तब भी हंसते थे, आज भी हंसते हैं।
वाह 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 वाह, अच्छा है।
आज केसरिया और हरा रंग, आज केसरिया और हरा रंग बस ट्रैफिक लाइट पर दिखता है, या फिर हर सिग्नल पर, या फिर हर सिग्नल पर 10 रुपए में भविष्य के हाथों बिकता है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सफेद रंग तो जाने कब का, सफेद रंग तो जाने कब का कैसे कैसे मैला हो गया, बहुत कोशिश की धोकर साफ करने की, पर आजकल पानी भी तो झमेला हो गया।
क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत प्यारी कविता। और आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी राशि, और इसके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। दिल के मैखाने में गम की मैकशी है और क्या, एक प्यारी जिंदगी में बेबसी है और क्या, और भीड़ में बस लब हिले थे, रह गया सब अनसुना, अब वो खामोशी बहुत कुछ कह रही है और क्या। तो राशि के लिए मुझे ये पंक्तियां याद आई, और अब वो खामोशी जब बोलती है तो बहुत खूब बोलती है। तो राशि, क्या एक और कविता हो जाए आपकी?
जी, ये फिर टीस से शब्द और शब्द से कविता है। कुछ नहीं, कल फिर एक बार टेलीफोन कर बैठे, वो दूसरी तरफ था पर कुछ बोला नहीं, कंप्यूटर की बस ठक ठक आवाज आ रही थी, वो दूसरी तरफ था पर कुछ बोला नहीं, कविताओं का अपने पिटारा खोले बैठा था, उसे क्या पता कि हमारी दर्द की पोटली फटने वाली है, कहता है मौन को मौन ही काटता है, उसे क्या पता कि इधर खुशी की ये धूप छटने वाली है।
अच्छा।
हम इधर मुखार मौन का दम भरे बैठे हैं, हम इधर मुखार मौन का दम भरे बैठे हैं, वो उधर फिल्म शूट में फुटेज लपेटता होगा, हम तो दिल में दुखी थे दिखता था, मगर शायद उसे भी अंदर कुछ कचोटता होगा, वो हर रात एक नया सपना दिखा रहा था, क्या पता था सुबह ही ना होगी, हमारा तो चलो दुखी रहकर नकाब नहीं ओढ़ना पड़ता, पर उसकी पता नहीं चादर कितनी बार फिसलती होगी, बाजार से चैन की शीशी और ख्वाबों की चादर के साथ, बाजार से चैन की शीशी और ख्वाबों के चादर के साथ अपने दोस्त से कहो मेरे लिए तुम्हारा एक हार मास का पतला भी मंगवा दे, कोशिश करके उसे कुछ ग्राम मुस्कुराहट ही दिलवा दे, उसको एक बार फिर श्वेत रंग रंगवा दे।
बहुत खूब, बहुत प्यारी कविता, बहुत
एक बार श्वेत रंग रंगवा दे।
तो राशि, बहुत ही प्यारी कविता है, और मुझे फिर से कुछ पंक्तियां आपकी टीस पर याद आ गईं कि मैंने शब्द शब्द रच डाले लोग वाह वाह कर उठे, मैंने शब्द शब्द रच डाले लोग वाह वाह कर उठे, तुम्हारी दी हुई टीस मेरी सबसे बहुमूल्य निधि। तो इस प्यारी सी महफिल को और भी खुशगवार बनाते हैं और चलते हैं अपने अगले कवि की तरफ, जो थोड़ी सी अभी हाल ही में यात्रा करके आए हैं, भारत के सबसे पारंपरिक और सबसे सुंदर प्रदेश का बनारस से ताल्लुक रखते हैं हमारे कवि मनीष वंदे मातरम। देखते हैं वो लोक शैली में हमारे पास पहुंचते हैं या फिर आम शैली में। तो मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से हम आपका फिर से स्वागत करते हैं।
नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वंदे मातरम। जैसा कि निखिल जी ने बताया कि मैं आ रहा हूँ अभी बनारस से, तो सोचा कुछ बनारस की बातें और उसकी सौगातें आपको पेश करूं। दूसरी चीज़ ये, जैसे अब इस मौसम के बाद फागुन आने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप इस फागुन आप सबको अपने गांव निमंत्रित करो, तो वही निमंत्रण देने में आया हूं, आशा है आप ज़रूर आएंगे।
जी बिल्कुल।
मेरी कविता का शीर्षक है इस फागुन ज़रूर से ज़रूर आना। मेरे गाँव की काली माई बड़ी प्रतापी हैं, सबकी मनौती पुराती हैं, 5 नारियल माना था मैंने, बोर्ड में 2nd डिवीज़न पास हुआ, गांव की हर नई बहुरिया उनको चुनरी चढ़ाती है, गांव के पश्चिम जो पीपल है उस पर दैतर बाबा रहते हैं, एक बार सोनमा के बाबू पर सवार हुए थे, एक बोतल दारू और दो चिलम गाजा से जान बची। जब बाबा मरे थे बाबूजी इसी पीपल पर कलसे में पानी टांगा करते थे, अब वो कलसा नहीं है, बाबा प्यासे होंगे। मेरे गांव का जो रास्ता है जिसकी छाती पर आज भी बचपन से अब तक के मेरे पैरों की नाप है, मेरा घर जानता है। तुम आँख बंद करके भी आओ तुम्हें मेरे घर तक पहुँचा ही देगा। ये तो पहले भी बता चुका हूँ, मैं और मेरे गांव का चांद हमजोली हैं। माँ ने दोनों को चांदी की कटोरी में साथ साथ दूध भात खिलाया है।
क्या बात है मनीष?
जब सरसों के फूल खिले, जब आमों में बौर लगे, मटर तीसी फुलाने लगे, जब झुरवुट में छिपी कोयल बुलाने लगे, मेरे गांव मत आना, इतनी सुंदरता तुम्हें बाउर कर देगी। आना,
बहुत बढ़िया।
आना जब बारिश हो, आह मेरे गाँव की बारिश पूरे मन से बरसती है। बचपन में खूब भीगा हूँ इसमें और मारा है बाबूजी ने, बाबूजी की मार याद नहीं पर बारिश की फुहार आज भी याद है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मेरे गांव का रास्ता, मेरे गांव का पीपल, मेरे गांव की बारिश, मेरे गांव की कोयल, सबसे तुम्हारी बातें करता हूँ। इस फागुन जरूर से जरूर आना, मिलवाऊंगा सबसे। धन्यवाद।
बहुत प्यारी कविता, बहुत प्यारी कविता। और निश्चय ही मनीष आपकी प्यारी सी कविता में जो आपने DU FM के श्रोताओं को अपना निमंत्रण भेजा है उन तक जरूर पहुंचा होगा और वो बिल्कुल अपने इस शहर में, दिल्ली जैसे शहर में से सीधे अपने गांव से जुड़ गए होंगे और वो पहुंच भी गए होंगे, अभी तक आपकी कविता के साथ ही सीधा अपने गाँव तक पहुँच गए होंगे। और मुझे भी दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि एक तरफ है चांद पर इंसानों के पाँव, एक तरफ है चांद पर इंसानों के पाँव और यहाँ अंधेर में सदियों से हैं गाँव। तो हम सब अपनी मिट्टी से जुड़े रहे हैं और जिन पेड़ों की जड़ें जितनी नीची होती हैं शाखाएं उतनी ही बड़ी फैलती हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि कविता की शाखाएं भी फैलती रहें, हमारे साथ एक संजीदा कवि बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि कब उसकी बारी आए और कब वो अपने शब्दों से हमें सराबोर करे। तो हम पहुंचते हैं अपने अगले कवि की तरफ। अगला कवि है अवनीश गौतम। अवनीश गौतम जी बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ।
आज़ादी क्या है, थकान क्या है, इस पे एक कविता है जिस 26 जनवरी के दिन 58 बरस गणतंत्र के, 58 बरस बीत गए हमारे गणतंत्र को, इन 58 वर्षों में आनी थी बराबरी, आनी थी बराबर की खुशहाली, आना था बराबर का सम्मान। इन 58 वर्षों में हाशिए पर फेंके गए लोगों को आना था मुख्य भूमि में, मगर हुआ क्या, अब कीजिएगा, मगर हुआ क्या, ताकतवर हुए और ताकतवर, अमीर हुए और अमीर, गरीब हुए और गरीब।
बढ़िया।
दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए 10-20 लोग और लाखों लोगों ने की आत्महत्याएं। दो अप्रवासी स्त्रियां अंतरिक्ष गईं और यहां लाखों गर्भ की गहराइयों में ही मार दी गईं। जो बच गईं उनमें से बहुतों का किया गया बलात्कार इन 58 वर्षों में। कुछ देवता, कुछ प्रतीक सामूहिक नरसंहार के हथियारों में बदल दिए गए, ये तो नहीं होना था इन 58 वर्षों में। ये तो नहीं होना था इन 58 वर्षों में। कुछ खामोशियां थीं जिनके अर्थ समझे जाने बाकी थे।
बहुत बढ़िया।
कुछ होंठ थे जिन पर मुस्कुराहट आनी बाकी थी, हजारों बरसों की जागी हुई कुछ आंखें थीं जिन्हें चैन की नींद सोना था।
बहुत
इन 58 वर्षों में, इन 58 वर्षों को चिड़िया की चोच में दबा तिनका बनना था उसके घोंसले के लिए आंधियों और तूफान के खिलाफ।
बहुत बढ़िया।
बंद गली के आखिरी मकान का दरवाजा खटखटाना था उम्मीदों को, बहुत कुछ होना था जो नहीं हुआ, बहुत कुछ होना था जो नहीं हुआ, बहुत कुछ नहीं होना था जो हुआ इन 58 वर्षों।
बहुत खूब।
मैं इस देश का मामूली सा जनगण, मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं इस देश का एक मामूली सा जनगण, मुझे बहुत कुछ चाहिए। एक रंग दे बसंती, एक चक दे इंडिया, या किसी सुपर पावर बनने की बात से नहीं बहलूंगा मैं।
बहुत खूब।
एक रंग दे बसंती, एक चक दे इंडिया, या किसी सुपर पावर बनने की बात से नहीं बहलूंगा मैं। मुझे रोज 26 जनवरी चाहिए।
क्या बात है।
मुझे रोज 26 जनवरी चाहिए और वैसी नहीं कि जैसी आती है। मुझे रोज 26 जनवरी चाहिए और वैसी नहीं कि जैसे हमेशा आती है, बल्कि वैसे कि जैसे आनी चाहिए। जैसे भूख लगे तो रोटी की तरह, जैसे प्यास लगे तो पानी की तरह, जैसे खामोशी हो तो पुकार की तरह, जैसे अंधेरा हो तो रोशनी की तरह। मुझे रोज 26 जनवरी चाहिए सर्दियों में गुनगुनाती धूप की तरह।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी कविता। एक युवा की टीस और हताशा और एक उम्मीद की किरण लेती हुई ये कविता अवनीश जी की, हम फिर से बजाना चाहेंगे, जोरदार तालियां अवनीश जी के लिए।
तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव फिर आपके साथ, और अब तक आप लोग सुन रहे थे हमारे साथ के कवियों की कविता, इसमें आपने मेरी कविता भी सुनी। और अब हमारे साथ ही निखिल, जो अब तक आपको सभी से मिलवा रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खुद बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो मैं निखिल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो डीयू एफएम के श्रोताओं को अपनी कविताओं से नवाजें। निखिल जी, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया अजय। चूंकि कविता का जो महफिल का जो माहौल बंधा है, उसी के हिसाब से कुछ कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि वैसे तो प्रेम की कविताएं लिखता हूं, लेकिन यहां पर माहौल जिस तरह का बंधा है, मैं चाहता हूं कि उसी रॉ में महफिल की धारा आगे बढ़ती रहे। तो पहले कुछ छोटी छोटी पंक्तियां, फिर एक कविता। कि गाँव से खत आया है, गाँव से खत आया है, पिताजी के पाँव में चोट है, माँ एक महीने से नहीं खाती दिन का खाना, बेटा शहर में तलाश रहा है दो बूंद आंसू। शुक्रिया। कि सड़क पर जल उठी लाल बत्ती, एक भूखा मासूम हाथ काले शीशे के भीतर घुसा, सड़क पर जल उठी लाल बत्ती, एक भूखा मासूम हाथ काले शीशे के भीतर घुसा, भीतर बैठे कुत्ते ने काट खाया हाथ, भीतर बैठे कुत्ते ने काट खाया हाथ, कब कैसे पेश आना है खूब समझते हैं एलीट कुत्ते। शुक्रिया। और अब एक कविता जो माहौल के अनुकूल गणतंत्र दिवस पर। एक देश है जो हर साल 26 जनवरी को फहराता है तिरंगा, एक देश है जो हर साल 26 जनवरी को फहराता है तिरंगा, जहां लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं विश्व कप जीतने का, जहां लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं विश्व कप जीतने का, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं लाल बत्ती के बुझने का कि भाग सकें जिंदगी की दौड़ में तेज बहुत तेज, जहां लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं विश्व कप जीतने का, जहां लोग इंतजार करते हैं लाल बत्ती के बुझने का कि भाग सकें जिंदगी में तेज सबसे तेज, इंतजार है एक सुपर हीरो का, इंतजार है एक सुपर हीरो का जो हर वो काम कर सके जिसे नहीं कर पाता आम आदमी। शुक्रिया। इंतजार है एक सुपर हीरो का जो हर वो काम कर सके जिसे नहीं कर पाता आम आदमी। आम आदमी रो नहीं सकता देर तक, आम आदमी रो नहीं सकता देर तक, नहीं कर सकता खुलकर प्यार अपनी नाराज प्रेमिका से, नहीं कर सकता खुलकर प्यार अपनी नाराज प्रेमिका से। एक देश है जिसकी आधी आबादी डुबोती है पाव रोटी चाय में और अभिनय करती है खुश होने का, एक देश है जिसकी आधी आबादी डुबोती है पाव रोटी चाय में और अभिनय करती है खुश होने का, जहां सड़क के किनारे फटी हुई चादर में माँ छिपाती है अपना बच्चा पिलाती है दूध, जहां सड़क के किनारे फटी हुई चादर में माँ छिपाती है अपना बच्चा पिलाती है दूध। एक देश है जहां रंगीन पानी पीकर लोग बन जाते हैं मर्द, एक देश है जहां रंगीन पानी पीकर लोग बन जाते हैं मर्द और नहीं समझ पाता कोई तीन कोस पैदल चलकर पानी लाने का दर्द, और नहीं समझ पाता कोई तीन कोस पैदल चलकर पानी लाने का दर्द। एक देश है जहां तिरंगे में लिपट कर देश का सपूत सो जाता है और उसकी मौत पर पेट्रोल पंप के टेंडर का खेल शुरू हो जाता है। एक देश जहां लगभग 26 साल की है देश की आधी आबादी, एक देश जहां लगभग 26 साल की है देश की आधी आबादी, पहनती है ब्रांडेड जीन्स और बोलती है खादी, जहां कैलेंडर की तारीखों में मनाए जाते हैं खास दिन खास लोगों के लिए, और देश का आम आदमी जिंदगी में ढूंढता रह जाता है एक खास पल कि वो खुलकर रो सके अकेले में। तो मेरी इस कविता के बाद मैं वापस संभालता हूं इस कवि गोष्ठी के संचालन की बागडोर, और अब हम चलते हैं फिर से एक हमारी वरिष्ठ कवयित्री की तरफ। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं, प्यारी रचनाएं लिखती हैं, और देखते हैं वो क्या लेकर आई हैं आज हमारे लिए। हमारी कवयित्री रंजना भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है इस कवि गोष्ठी में।
अजब सा माहौल है तेरे शहर का, दर्द की लिबास पहने हर पल सिसकता है।
बहुत अच्छा, फिर से पढ़ें जी।
अजब सा माहौल है तेरे शहर का, दर्द की लिबास पहने हर पल सिसकता है, कौन करे अब यहाँ वफा जफा की बातें, आहों के धुएं से धुंधला आकाश लगता है।
बहुत अच्छा।
सिसकते दिखते हैं जज्बात हर कोने में यहाँ, सिसकते दिखते हैं जज्बात हर कोने में यहाँ, सावन के बिना ये आंसुओं से भीगी बरसात लगता है।
बहुत खूब।
अजब सा माहौल है तेरे शहर का, दर्द का लिबास पहने हर पल सिसकता है।
बहुत अच्छा।
जिए अब कैसे हर ख्वाब को यहाँ आंखों में, जिए अब कैसे हर ख्वाब को यहाँ आंखों में, जुआरी की हार सा हर शख्स आज यहाँ लगता है।
क्या बात है।
कैसे जिए तेरे शहर की इस दर्द भरी छांव में,
कैसे
जिए तेरे शहर की इस दर्द भरी छांव में, रात की बरसती चांदनी में भी ये तपती आग लगता है।
बहुत खूब, क्या बात है।
अजब सा माहौल है तेरे शहर का, दर्द की लिबास पहने हर पल सिसकता है।
हम चाहेंगे कि फिर से जो एक संजीदा माहौल बन रहा है उस माहौल के क्रम को तोड़ें और कविता के सुर में एक नया सुर जोड़ें। भूपेंद्र राघव,
घुमक्कड़ जिज्ञासा का रहा हूँ और घूमना मेरा चलता रहता है। इसी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता लोग मानते हैं और अपनी अपनी स्वतंत्रता किस तरह से मनाते हैं वैसा ही मैंने कहीं देखा और वो उतार दिया। सुनिएगा, हाल ही में श्रीमान जी MBBS कर स्वदेश आते हैं लोगों को इकट्ठा कर नशा मुक्त जीवन की युक्ति बताते हैं, बीड़ा उठाते हैं, आइए अपने देश को नशा मुक्त बनाते हैं। इसी सिलसिले में एक मैखाने पहुंच जाते हैं, टाई को संभाल कर जोर से चिल्लाते हैं, मेरे युवा भाइयों गौर से सुनिए, नशे को नहीं खुशहाली को चुनिए।
क्या बात है,
ये शराब ये नशा करता है दुर्दशा, कैसे लोग मरते हैं इसको पीकर, सिद्ध करता हूँ आपके सामने। फिर निकालते हैं अपने बैग से दो बीकर, एक बीकर में पानी दूसरे में शराब लेते हैं और फिर दोनों में कुछ केचुए डाल देते हैं।
क्या बात है,
पानी में केचुए मस्ती से छलांग लगाते हैं मगर शराब में केचुए बिलबिलाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं। श्रीमान डॉक्टर साहब निशब्द महफिल में मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बताइए दोस्तों इससे हम किस निष्कर्ष पर आते हैं। सबके मुंह सिले हैं, महफिल में सन्नाटा है, तभी कुछ शब्द मौन भंग करते हुए टूटे फूटे से लड़खड़ाते हुए पीछे से आते हैं, डॉक्टर साहब इससे पता चलता है कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, जो समझना चाहते हैं वही समझते हैं, और फिर बाद में अपनी नासमझी पर नहीं अपनी समझदारी पर रोते हैं।
बहुत अच्छे, क्या बात है भूपेंद्र जी,
धन्यवाद।
इसी के साथ kavi.com के आज के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपने दोस्त निखिल आनंद गिरी को। नमस्कार।
DU FM पर प्रसारित kavi.com में प्रस्तुत रचनाएं रचनाकारों के व्यक्तिगत भाव या विचार हैं। kavi.com के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता प्रदीप शर्मा।